बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। आप डायरेक्टर हैं कराची यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस। आपसे बात करने का मकसद मेरा ये था, जो रिसेंटली पाकिस्तानी फेडरल हुकूमत ने अनाउंस किया है कि पाकिस्तान में कैनबीस की प्रोडक्शन को, या मैरवाना की, या जिसे हेम्प या मुख्तलिफ नामों से, भंग से भी जाना जाता है, उसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान बढ़ाने लगा है ऑफिशियली, और इंटरनेशनल मार्केट का हिस्सा बनना चाह रहा है। उसमें आपका इंस्टीट्यूट कुछ किरदार अदा कर रहा है, तो जो लोग इस चीज से नावाकिफ हैं, कोई ब्रीफली आइडिया देंगे कि बेसिकली पाकिस्तान करने क्या जा रहा है?
देखिए, ये जो कैनबस है, स्पेशली जो इंडस्ट्रियल हैम्प है, पहले तो समझ लीजिए कि जो कैनबस है वो उसकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। उनमें एक किस्म है जिसे इंडस्ट्रियल हैम्प कहते हैं, और इस ख़ास किस्म में कोई नशावर चीज़ नहीं होती, क्योंकि इसमें जो नशावर चीज़ है उसकी कंसंट्रेशन इतनी कम है कि उससे आप यूफोरिक का, आपको किसी किस्म का कोई नशा फील नहीं होता, तो इसे इंडस्ट्रियल हैम्प कहते हैं। और इसके बहुत सारे तिब्बी फवायद हैं, इसके बहुत सारे कॉस्मेटिक के यूजेस हैं, इसके अलावा इसको फाइबर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दुनिया में बड़ी क्रैश कैश क्रॉप के तौर पे इंट्रोड्यूस हो रही है, और उसका जो ग्लोबल बिजनेस है वो कई बिलियन डॉलर से ज़्यादा एक्सीड कर गया है। रफली अबाउट 25 बिलियन US डॉलर का बिजनेस है इंडस्ट्रियल हैम्प का लोन। तो ये पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पाकिस्तान का जो वेदर है और उसकी जो कंडीशन है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर कंडीशन, वो बड़ी सुटेबल है कल्टीवेशन के लिए। तो क्योंकि पाकिस्तान में लीगली कैनबस बैन था, और उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी कि जो कैनबस सैटिवा, वो जिससे नशा होता है, और वो कैनबस जिसे इंडस्ट्रियल हैम कहते हैं, जिसे कोई नशा नहीं होता और जिसके बेशुमार फवायद हैं, उसको उसमें तमीज़ की जाए। तो गवर्नमेंट ने अभी इसी पिछले साल कैबिनेट का एक डिसीजन हुआ है, जिसमें ये तय किया गया है कि इंडस्ट्रियल हैम को उस कैनबस से जो नशावर कैनबस है उसे अलग ट्रीट किया जाएगा, और इंडस्ट्रियल हैम की कल्टीवेशन को स्लोली और ग्रेजुअली मुल्क में प्रमोट किया जाएगा, ताकि इसकी एक्सपोर्ट भी बढ़े, और इससे जो पाकिस्तान की डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज हैं कॉस्मेटिक्स की, फार्मास्यूटिकल की और टेक्सटाइल की, उससे फायदा हो।
अच्छा, इसमें दो चीजें क्विकली, आई एम सॉरी इंटरव्यू में जानना चाह रहा हूँ कि जब ये प्रोडक्ट्स आप इवेंचुअली, जो आइडिया है वो सिर्फ एक्सपोर्ट करने का है या पाकिस्तान में भी ये चीजें बेची जाएंगी?
देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है बुनियादी तौर पे, और जो जो कैबिनेट का डिसीजन है, वो तो ये है कि इसकी कल्टिवेशन और कमर्शलाइजेशन अलाउ की गई है।
ओके,
और इसमें किसी किस्म की कोई तमीज़ नहीं है कि आप एक्सपोर्ट ही करें। मैं एक्सपोर्ट के इस रेफरेंस से बात कर रहा था, एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत है इसमें, क्योंकि दुनिया में इंडस्ट्रियल हैम की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और ऑफकोर्स पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी इससे बेनिफिट ले सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक बहुत वसी नेटवर्क है, और वो अब नई प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं।
अच्छा, और जहां तक प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, ऑब्वियसली आप का इसमें इंस्टीट्यूट भी इन्वॉल्व है, तो अब तक आपको कुछ आइडिया हुआ है कि कौन कौन से स्पेसिफिकली प्रोडक्ट्स पाकिस्तान बनाने की सोच रहा है इस मार्केट में?
देखिए, इंडस्ट्रियल हैम को जब आप कल्टिवेट करते हैं, तो उससे जो प्रोडक्ट मिलती है आपको, पहली रॉ मटेरियल जो होता है उसे सीबीडी कहते हैं।
ओके,
और सीबीडी है, कैनबिडाइल कहते हैं, और इसका बुनियादी, ये जो सीबीडी ऑयल है, ये यूज़ होता है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में। मिसाल के तौर पे इसे आप कॉस्मेटिक्स बना सकते हैं, इससे पेन किलर जो फार्मास्यूटिकल होती है वो बनती है, इसके अलावा इसके न्यूरोलॉजिकल फवाइद बहुत सारे हैं, क्योंकि ये एपिलेप्सी में भी और पार्किंसन में भी और मुख्तलिफ किस्म के जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसमें भी इस्तेमाल होती है। तो मैं समझता हूँ कि जो पोटेंशियल मार्केट पाकिस्तान में है वो तीन किस्म की है। एक तो कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान में बहुत अच्छे बन सकते हैं, क्योंकि सीबीडी ऑयल के जो कॉस्मेटिक्स हैं वो दुनिया में बेहतरीन स्किन केयर आइटम समझे जाते हैं। दूसरा फार्मास्यूटिकल है, फार्मास्यूटिकल में पेन किलर्स हैं, टॉपिकल एप्लीकेशंस हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के, वो भी बहुत ही सेफ है और उनकी भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। और तीसरी जो बहुत अहम मार्केट है वो ये है कि इसका जो फाइबर होता है, इसके जो स्टेम में, इसके तने में ख़ास किस्म का फाइबर है जो कॉटन फाइबर के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेहतर समझा जाता है, क्योंकि वो मजबूत भी बहुत होता है, और उसे ऑर्गेनिक फाइबर कहते हैं, और उससे मुख्तलिफ किस्म की टेक्सटाइल भी बनती है। तो जो इंडस्ट्रियल हेम्प का फाइबर है उसका भी बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत इवॉल्व है और उसको कॉटन इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंडस्ट्रियल हेम्प की कल्टिवेशन से पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इस हेम्प बेस्ड टेक्सटाइल बना सकती है, जिनकी जो मार्केट वैल्यू है वो कॉटन फैब्रिक के मुकाबले में कोई 10 गुना ज़्यादा है।
अच्छा, आपका इंस्टीट्यूट कराची में बेस्ड है, यूनिवर्सिटी में, तो स्पेसिफिक ब्रीफली उस पर थोड़ा बताएंगे कि आपके इंस्टीट्यूट में इस वक्त मतलब किस तरह आप इन्वॉल्व हैं, क्या कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड?
देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि बड़ी एक्साइटिंग किस्म का टाइम है कि पाकिस्तान में एक अप्रूवल जो हुई है बड़ी टाइमली है। गालिबन ये एक बहुत अच्छा कदम इस रेफरेंस से है कि पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल है, पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर है वो खासा कन्वेंशनल और पुराना है और उसमें नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस नहीं हो रही थी। तो ये इंडस्ट्रियल हेम्प के इंट्रोडक्शन से पाकिस्तान की एग्रीकल्चर बेस को फ़ायदा होगा और उस फार्मास्यूटिकल कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज को भी फायदा होगा। तो पहले मरहले में 2 इदारों को इजाज़त दी गई है कि इसकी कल्टीवेशन करें और कमर्शलाइजेशन करें। एक पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च है जिसे PCSIR कहते हैं, और दूसरा हमारा सेंटर है इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस, ICCBS मुख्तसरन कहा जाता है। और ICCBS आप समझ लीजिए कि दुनिया में तहकीक के बड़े इदारों में शुमार होता है। ये 1966 में कायम हुआ था और उसमें बहुत बड़े साइंसदानों ने काम किया है, और ये वो इदारा है पाकिस्तान का जो यूनेस्को सेंटर भी है, WHO सेंटर भी है। इसके अलावा पूरी दुनिया से यहाँ लोग आते हैं, इवन जर्मनी और फ्रांस से भी स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए। तो इस इदारे में इस इदारे की तहकीक में एक बहुत मजबूत पहलू जो है वो पौधों पे तहकीक का है, क्योंकि इंडस्ट्रियल हेम्प भी एक पौधा है और एक तिब्बी पौधा है, एक मेडिसिनल प्लांट है। तो इस पे हमारे हमारे इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है। अब जहन में रखने की ज़रूरत है कि आप उसी जगह काम कर सकते हैं आज की दुनिया में जहां आपके पास इंडिजिनस कैपेसिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि कल्टीवेशन तो खैर एक ऐसा मामला है जिसमें आपको एग्रोनॉमिस्ट को इन्वॉल्व करना पड़ता है, मगर जब इसकी कल्टीवेशन के बाद जब इसकी CBD ऑयल की प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मरहला आएगा, तो जो इंस्टीट्यूशन की एग्जिस्टिंग साइंटिफिक कैपेसिटी है वो बहुत अहम किरदार अदा करेगी, क्योंकि इस इदारे को दुनिया में पहचाना जाता है इसकी कंट्रीब्यूशन प्लांट्स पे है।
अच्छा, क्विकली मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब ये असल इसकी जो शक्ल इख्तियार कर लेगी, जब हम एक्सपोर्ट की पोजीशन में होगा, पाकिस्तान करेगा, तो इसकी जो कल्टीवेशन है, ये इस किस्म की इंडस्ट्रियल हेम्प उगाने का जो काम है वो मुकम्मल गवर्नमेंट करेगी, या उसको कोई आम लोगों को भी दिया जाएगा, जो फार्मर्स हैं, या कुछ प्राइवेट सेक्टर को भी दिया जाएगा ये?
देखिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि महज ये 2 इदारे तो इस सेक्टर को प्रमोट अकेले नहीं कर सकते।
मैं इसीलिए बात जानना चाह रहा था
जी,
जी।
इसमें प्राइवेट सेक्टर का आना बहुत ज़रूरी है। अब उसमें अहम चीज़ यह है कि क्योंकि ये इजाज़त पहली दफ़ा दी गई है और कैनबस के पौधा और जो इंडस्ट्रियल हेम्प है दोनों में शक्लन कोई फ़र्क नहीं होता, तो पहले बुनियादी तौर पे इस बात का ख्याल किया जा रहा है कि इसको कंट्रोल तरीके से शुरू किया जाए, क्योंकि अगर आप उसे इजाज़त दे दें सारे लोगों को तो आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप ये पहचान सकें कि कैनबस है या इंडस्ट्रियल हेम्प है। तो एक सिस्टमेटिकली एक बड़े कोहेरेंट प्रोग्राम के तहत ये तय किया गया है कि इब्तदाई कुछ सालों में ये 2 इदारे कल्टीवेशन करेंगे, उसके लिए ख़ास किस्म के बीज भी बाहर से आते हैं, और जब हमारी कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी प्रोडक्शन की और इन्फोर्समेंट की भी, बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन्फोर्स कर सकें आप, क्योंकि कैनबस स्टिल जिसे आप भंग कहते हैं, नशावर भंग, वो एक अभी भी एक कंट्रोल सब्सटेंस है और पाकिस्तान के कानून में उसकी इजाज़त नहीं है। तो आपके सवाल का जवाब यह है कि इस बात को क्लियरली अंडरस्टैंड किया जाता है कि इस सेक्टर को अगर वाकई पाकिस्तान को इससे फ़ायदा होना है तो उसमें प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होगी और उसे बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा।
और जो कैपेसिटी आपने बताई है, जो एंड प्रोडक्ट आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट का हिस्सा बन सकता है प्रोडक्ट्स को बेच के, तो इस पूरे प्रोजेक्ट की कोई टाइमलाइन है कि कब से जो है आप या ये मुल्क जो है इस पोजीशन में होगा कि एक्सपोर्ट करना शुरू करें या प्रोडक्ट्स एक्चुअली मार्केट में आए?
देखिए, एक अहम बात जो समझने की है कि पाकिस्तान क्यों एक यूनिक पोजीशन में है, और भी पाकिस्तान जैसे और दूसरे ममालिक भी, कि इस वक्त जो इंडस्ट्रियल हेम्प की कल्टीवेशन है वो ऐसे ममालिक में होती है जैसे कनाडा में है, इवन चाइना में भी और दूसरे ममालिक में, जहाँ पे मौसम एक्सट्रीम है, तो वहाँ पे कंट्रोल कंडीशन में होती है, ग्रीन हाउसेस में होती है जिन्हें हीट करना पड़ता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्रियल हेम्प की। क्वालिटी ऑफ कोर्स बहुत अच्छी होती है, मगर पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन नहीं है। पाकिस्तान में तकरीबन पूरे मुल्क में आपके पास मौसम का कोई एक हिस्सा ज़रूर होता है साल में, जिसमें आप इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं बगैर किसी ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट के। तो टाइमलाइन यह है कि इस वक्त दोनों इदारे, हमारा इदारा भी और PCSIR भी, बुनियादी तैयारियों में हैं। हम लोग ज़मीन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिसकी कंडीशन आइडियल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल हेम्प। उसके बाद टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिससे, क्योंकि इंडस्ट्रियल हेम्प को आपको लगाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, ये 6 to 8 weeks की क्रॉप है, 6 से 8 हफ्ते में ये बन जाती है, और उसको फिर आपने पोस्ट हार्वेस्टिंग इसको रखना होता है, और उसको मैं और उसमें से फिर ऑयल एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये टाइमलाइन जो हमने तय की है अपने इदारों में, उसके लिहाज से हमारा ख्याल ये कि हम पहली इंडस्ट्रियल हेम्प की प्रोडक्शन जो है वो कुछ साल 1.5 साल में शुरू कर सकते हैं। अब वो एक्सपोर्ट के लिए उतनी अनफ क्वांटिटी होगी, ये एक सवाल है जिसका जवाब अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कितनी लार्ज एरिया में कल्टीवेशन आप करते हैं।
तो
अगर छोटे,
ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि 2022 में पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में हो?
देखिए, हमने एक और अहम चीज़ की है दोनों इदारों ने, कि हमने जो मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक कंट्रोल है उसको अप्रोच किया है, उनसे कहा, उनसे रिक्वेस्ट की है कि हमें प्राइवेट सेक्टर के साथ इजाज़त दी जाए ताकि इसको हम बड़े पैमाने पे कर सकें, क्योंकि अगर आप 100 150 एकड़ पे करते हैं तो वो इकोनॉमी ऑफ स्केल बनती नहीं है, आप प्रोड्यूस करेंगे भी तो कितना एक्सपोर्ट करेंगे, इसके इसे तो कई 1000 एकड़ पे होना चाहिए। और खुशकिस्मती इस सिलसिले में एक जो एडवांटेज है वो ये है कि इसके लिए आपको अपने नॉर्मल एग्रीकल्चर साइकिल को नहीं तोड़ना पड़ता, बल्कि जो दो क्रॉप्स के बीच में टाइम होता है उसमें आप इसे ग्रो कर सकते हैं और मार्जिनल लैंड्स पे कर सकते हैं। तो अगर हमें ये इजाज़त मिल जाती है तो जो आप 2022 की बात कर रहे हैं वो 2022 तक इंशाल्लाह मुल्क इस पोजीशन में होगा कि इसे एक्सपोर्ट किया जा सके।
और एक बात साहब, फाइनली एक चीज ब्रीफली आपसे जानना चाहूंगा। आपने पोटेंशियल की बात की और पाकिस्तान क्योंकि ट्रेडिशनली एक एग्रीकल्चरल मुल्क रहा है, जिस जिस तरह से इसका पोटेंशियल है इंटरनेशनल मार्केट में और पाकिस्तान का एनवायरनमेंट देख के आप जो ग्रो करने की यूनिक पोजिशन है, क्या आपको ये लगता है कि मुस्तकबिल में जाके अगर हर चीज इनके फेवर में रही तो ये पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है या ट्रेडिशनल उसको रिप्लेस कर सकता है ये?
मुझे यकीन है कि ये एक बहुत बड़ा हिस्सा बनेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट अपने इन्फोर्समेंट को इम्प्रूव कर लेती है और इस बात को इंश्योर कर लेती है कि लोग इंडस्ट्रियल हेम्प के नाम पर कैनबस ग्रो नहीं कर रहे, तो ये प्राइवेट सेक्टर इसको खुद ले लेगा, क्योंकि इसमें एडवांटेज बहुत है। इसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन है वो दूसरी क्रॉप्स के मुकाबले में कई सौ गुना ज़्यादा है, कई गुना नहीं बल्कि कई सौ गुना का ज़्यादा है, तो प्राइवेट सेक्टर तो इसको लेगा। मगर इसमें इस बात की भी अहम ज़रूरत है कि ये इंडस्ट्रियल हेम्प भी ग्रो ना किया जाए, बल्कि इनफैक्ट उसको उस जगह ग्रो किया जाए जहाँ मार्जिनल लैंड्स हैं और जहाँ पे हमारे यहाँ नॉर्मल जो हमारी कैश क्रॉप्स हैं, ये हमारी फूड क्रॉप्स हैं, वो नहीं ग्रो होती, क्योंकि आप, यू डोंट वॉन्ट कि इंडस्ट्रियल हेम्प ग्रो हो रहा हो और आप इवेंचुअली जो सीरियल्स और पल्सेस हैं वो इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर एडवांटेज ले सकता है। मार्जिनल लैंड्स हैं, ऐसी लैंड्स हैं जिसके अंदर बारानी ज़मीनें हैं, उन जगह जहाँ बारिश से काश्त होती है उनके लिए बड़ा आइडियल है, बिकॉज कुछ जिस वक्त में बारिश हो रही होती है उसी वक्त तकरीबन मौसम ऐसा होता है कि इस दौरान में आप इसको कल्टिवेट कर सकते हैं, तो उसका पोटेंशियल बहुत है। इसको नॉर्मल जो हमारी कन्वेंशनल क्रॉप्स है उससे रिप्लेस वो उसको रिप्लेस करेगा. ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि
राइट
फूड
एंड
सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
राइट एंड वन लास्ट थिंग, आपने बताया आप इस बात पे जोर दे रहे हैं ऑब्वियसली कि इंडस्ट्रियल हेम्प को पाकिस्तान वो करे और जो जो दूसरी किस्म है उसकी जो नशे के लिए इस्तेमाल होती है उसको डिस्करेज किया जाए। जनरली वैसे पूरी दुनिया में देखा जाता है, और आपने जिन केमिकल्स का नाम दिया है CBD का और बाकी, वो किसी न किसी अंदाज में नशे के तहत भी यूज किए जाते हैं। ऑल्दो आपकी इंटेंशन यही हो सकती है कि आप इसको इंडस्ट्रियल उसमें लेवल पे यूज करें, बट वो भी तो अगर कोई इसको अब्यूज करना चाहे तो नशे के तौर पे इस्तेमाल तो हो सकती है।
नहीं, इंडस्ट्रियल हेम्प में कोई नशा नहीं होता क्योंकि इसमें जो TSC का लेवल है, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉइड कहते हैं, वो 0.3% है. अब 0.3% तो आप अगर कोई 1 kg भी खा ले तो उसे किसी किस्म की फीलिंग नहीं होगी.
अच्छा, तो वो
तो
अब्यूज नहीं
ये
हो सकती।
बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट. इंडस्ट्रियल हेम्प का जो बीज है वो भी खास किस्म का होता है और वो हाइब्रिड सीड्स हैं. उससे सिर्फ इंडस्ट्रियल हेम्प ग्रो होता है, उससे कैनबस ग्रो नहीं हो सकता. और इंडस्ट्रियल हेम्प में कोई ऐसी चीज नहीं है जो नशावर हो.
ऑलराइट, इकबाल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।
शुक्रिया आफ्ताब, थैंक यू वेरी मच.
थैंक यू।